जय राधा माधव कुंज बिहारी, थोड़ा शांति रखें सब लोग कृपया। बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, केवल भगवान का नाम लीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, अल्लाह गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना यमुना तीरावन चारी, माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jay Jagannath, Baladeva, Jay Subhadra. Jay Gauranita, Jay Gauranita, Gauranita, Jay Gauranita. Hari bol, Nitai Gaur, Hari bol.
Jai Om Vishnupad, Paramhans, Parivraj, Kacharya, Shtotar, Shat, Shishra, Madhavai, Charnar, Vind, Bhakti, Vedanta, Swami, Shila, Prabhupada, Ki. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramhans Parivraj Kacharya Shtodar Shat Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahiyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Gurav Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है पुरुषोत्तम मास के इस अंतिम दिवसों में। पुरुषोत्तम महीना हम लोग सुन रहे थे कि करीब चार वर्ष में एक बार आता है, साढ़े तीन चार वर्ष में। ये इसलिए आता है क्योंकि दो तरह के जो पंचांग हम लोग पालन करते हैं, एक सूर्य के आधार पर और एक चंद्रमा के आधार पर, तो फिर उन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होने पर उस अंतर को ठीक करने के लिए ये 30 दिनों का एक महीना हर साढ़े तीन साल में एक बार आता है। और इसमें ऐसे बताया जाता है कि व्यक्ति को बहुत से तपस्याएं नियम कुछ पालन करने चाहिए। जैसे हम लोग सुन रहे थे पुराणों में वर्णन है कि व्यक्ति को भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जगन्नाथ अष्टकम चौराग्र गण्यम इन सारे अष्टकमों को गाना चाहिए इत्यादि। तो ये कुछ नियम बताए गए, तो इन सब को सुनकर मन में एक प्रश्न आता है कि क्या नियमों का पालन करना आवश्यक है? क्या कोई भगवान को बिना नियम पालन किए प्राप्त नहीं कर सकता? क्या आवश्यकता है नियमों की? क्यों ऐसे नियम बनाए जाते हैं? ऐसे कई लोग हैं समाज में जो ये कहते हैं कि नियमों की आवश्यकता नहीं है, नियम से आप बांध देते हो। व्यक्ति को मुक्त होना है तो मुक्त होने के लिए नियमों में बंधने की आवश्यकता नहीं है। और फिर अगर कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो प्रेम करने में नियमों की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आप इसको इतने नियम से प्रेम करो? प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम तो प्रेम है। किसी से आप प्रेम करते हो तो नियम से नहीं कर सकते। जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमारे लिए नियम होते हैं कि हमको सुबह जल्दी उठना है, भगवान की आरती करनी है, भगवान के नाम का जप करना है। तो प्रश्न आता है मन में कि क्या ये नियम पालन करने से प्रेम उत्पन्न होगा? जबरदस्ती भागो, उठो, ये करो, वो करो, इससे तो कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या भौतिक जगत में हम देखते हैं कि किसी से प्रेम करने के लिए नियम होता है? कोई व्यक्ति आपको कहता है मुझसे प्रेम करना है तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, आपको मेरे नाम का जप करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा? नहीं, प्रेम करने में कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए। जहां भी शर्त है वो व्यापार माना जाता है। लेकिन फिर भी भक्ति करते हुए भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भी नियमों को दिया जाता है। तो इसको कैसे समझना चाहिए, क्या नियम पालन जीवन में आवश्यक है या नहीं है, क्या नियम पालन से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं या सीधे प्रेम करके, ये एक प्रश्न है। तो आज इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि क्या आवश्यकता है नियमों की हमारे जीवन में। वैदिक सभ्यता के अनुसार, वैदिक सभ्यता का आधार है शास्त्र। वैदिक सभ्यता किसी के मन की कल्पना पर बनाए हुए नियमों से नहीं चलती है। हम अपने नियम नहीं बना सकते हैं खुद, हमें शास्त्र के नियम जो हैं उनको बना, उनका पालन करते हुए वैदिक सभ्यता का पालन करना होता है। और वैदिक सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है शास्त्र के नियमों का पालन करना। तो शास्त्र के नियम का पालन करने का सबसे पहला कारण है कि इससे वैदिक सभ्यता की स्थापना होती है। क्योंकि अगर वैदिक सभ्यता ही नहीं है तो फिर भगवान की प्राप्ति असंभव है। कोई वेदों का पालन नहीं करता, शास्त्रों का पालन नहीं करता, वो कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्या अपने मन से हम घर में रहते हुए अपने ही मन की भक्ति करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर मन में ये बना लें मैं जो कार्य कर रहा हूं बस वही ठीक है, नहीं। इस जगत में भी हम देखते हैं, आप अपने घर में रहते हुए अपने ही घर के लिए केवल नियम भी नहीं बना सकते, वो भी सरकार बनाती है। आप अगर सड़क पर चलना चाहते हैं सरकार के नियम हैं, गाड़ी चलाना है सरकार के नियम हैं, आपके खुद के नियम नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जहां भी मन आएगा वहीं गाड़ी चलाऊंगा, मेरी गाड़ी है, नहीं। इसी तरह ये जो गाड़ी, ये जो शरीर हमें मिला है, भले ही हम इसे अपना कहते हैं, ये हमारा शरीर है, लेकिन फिर भी जैसे हमारी गाड़ी होते हुए जिसको हम धन देकर खरीदते हैं हमें उसको नियम से चलाना होता है। हम उसे अपने मन के तरीके से नहीं चला सकते। लाल बत्ती पर रुकना है, हरी भक्ति हरी बत्ती हो जाए तब चलना है इत्यादि। तो फिर जब उस गाड़ी को चलाने के लिए नियम लगते हैं तो इस गाड़ी को चलाने के लिए भी नियम दिए गए हैं, ताकि सारी गाड़ियां ठीक से चल सकें, नहीं तो केवल एक्सीडेंट होगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पातेव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि, अगर कोई व्यक्ति श्रुति या स्मृति अर्थात उपनिषदों को या फिर वेदों को पुराणों को नहीं मानता, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम विना कोई विधि का पालन नहीं करता, एकांत की हरेर भक्ति, फिर भी क्या कर रहा है, हरि की भक्ति, अर्थात हरि की भक्ति कर रहा है लेकिन किसी नियम का पालन नहीं करता, न श्रुति को मानता है न स्मृति को मानता है न वेदों को मानता है न पुराणों को मानता है। उत्पाते व कल्पते, केवल उसके जीवन में उत्पात खड़ा करेगा और साथ ही साथ सारे समाज में भी। और इसीलिए नियमों का पालन बहुत आवश्यक है, ताकि हम समाज में उत्पात ना करें, हम अपने जीवन को और अन्यों के जीवन को भी ठीक तरह से चला सकें। शास्त्रों में इसके कई उदाहरण हैं कि जहां नियमों के पालन के लिए बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों को कहा गया, राज ऋषि हुए। भागवत में हम लोग सुनते हैं दक्ष की कथा, दक्ष तो पूरी ब्रह्मांड के प्रजापति हैं, तो इतने बड़े स्तर पर होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्रों को नियम का पालन करने के लिए कहा। कोई ये कह सकता है कि नियम का पालन जिनके पास बहुत धन है उनके लिए नहीं है, नियम का पालन जो बहुत बड़े स्तर पर हैं उनके लिए नहीं है? नहीं, शास्त्रों का पालन हरेक के लिए है, हर अवस्था में है। फिर वो चाहे अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो या कोई भी क्यों ना हो। तो दक्ष जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति जो सारे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, उसने भी अपने पुत्रों को कहा जाओ और तपस्या करो, नियम का पालन करो, शास्त्र में कहा गया है इसीलिए। और इतना ही नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने, जब श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे तो स्वयं उन्होंने शास्त्रों का पालन किया। अब बताइए, भगवान जो शास्त्र देते हैं, जो इस जगत को बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उनको क्या आवश्यकता है नियमों की? क्या नियम का पालन करने से वो अपने हृदय में भक्ति को लाना चाहते हैं? क्या नियम का पालन करने से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी जब द्वारिका में भगवान रह रहे थे तो एक गृहस्थ जीवन के बहुत अच्छी तरह से नियमों का उन्होंने पालन किया। सुबह जल्दी उठना, पूजा इत्यादि करना, यज्ञ करना और फिर घर के अन्य कार्यों को करना शास्त्रों के अनुसार। देखिए, हम लोग जहाँ जिस अवस्था में हैं, शास्त्रों में उनके लिए नियम दिए गए हैं। जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए शास्त्रों में नियम हैं, कैसे उन्हें अपना जीवन बिताना है, कैसे आचरण करना है, क्या उनके लिए प्रमुख कार्य हैं। जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए भी नियम हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, ब्रह्मचारी आश्रम कहा जाता है, वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है, क्योंकि इन स्थानों में, इस स्थान में रहते हुए उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होता है। तो जिस स्थान में रहकर व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति करने का प्रयास करता है, उस स्थान को आश्रम कहते हैं। अब आप अपने घर को भी आश्रम बना सकते हो। यही चीजें करनी है नियमों का पालन श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। तो जहां भी हो व्यक्ति, जिस स्थिति में भी हो, उसे नियम का पालन करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए? शास्त्रों में वर्णन है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम्। व्यक्ति को तब तक नियम का पालन करना चाहिए जब तक वो इस स्तर पर नहीं है। कौन से स्तर पर? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। जहां वो इतनी प्रगाढ़ भक्ति कर रहा है भगवान की, इतनी तीव्र भक्ति कर रहा है भगवान की, कि उसके हृदय में वैराग्य और ज्ञान स्वतः प्रकट हो रहा है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौनिताय की जय। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, जब भक्ति हृदय में आ गई, श्री कृष्ण हृदय में आ गए, स्वतः ज्ञान आएगा, स्वतः वैराग्य आएगा। लेकिन तब तक नियम का पालन अनिवार्य है। भगवद गीता में भगवान बहुत अच्छी बात बताते हैं। भगवान कहते हैं, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियाश्चरन। अगर हम नियम का पालन करते हैं तो हमें राग और द्वेष से मुक्ति मिलती है। राग क्या है? आसक्ति। और द्वेष क्या है? उस आसक्ति में जो भी हमारे बाधा बनता है उसके प्रति भाव, ये द्वेष कहलाता है। राग और द्वेष, इस जगत में यही दो चीजें हैं। हमें किसी चीज से आसक्ति है और जब उस आसक्ति में कोई बाधा आती है तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। बस यही इस जगत में है। इसीलिए जो व्यक्ति इस जगत के परे जाना चाहता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के द्वारा बनाई गई इस भौतिक जगत के परे जाना चाहता है, ऐसी अवस्था में जहां भगवान को प्रेम कर सके, जहां भगवान की भक्ति करते हुए, उनकी सेवा करते हुए हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, ब्रह्मभूत अवस्था मतलब जहां भगवान के प्रति प्रेम, भगवान ही जीवन का अस्तित्व हो, जीवन में केवल कृष्ण हो, ये ब्रह्मभूत अवस्था। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा उस अवस्था में न शोचती न कांक्षति, कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है और ना ही द्वेष है, कोई शोक नहीं करते किसी चीज के लिए, उसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। और ऐसी अवस्था नियम का पालन करने से प्राप्त होती है, और तब तक व्यक्ति को नियम का पालन करना चाहिए, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं 6 गोस्वामियों का। वृंदावन में आज से करीब 500 वर्ष पूर्व 6 गोस्वामी बड़े प्रसिद्ध हुए, जिनमें रूप गोस्वामी उनके प्रमुख थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि। और उन्होंने अपने उदाहरण से दिखलाया कि वे बहुत ऊंचे स्तर पर थे। आपको एक उदाहरण देते हैं कि रूप गोस्वामी का स्तर क्या था। रूप गोस्वामी आंखें बंद करके वृक्ष के नीचे वृंदावन में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे। और कैसा स्मरण होता था उनका, उन लीलाओं को वो देखते थे। केवल स्मरण नहीं, ऐसा नहीं जैसे हम लोग सोचते हैं कि कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे, हमें तो दिखाई नहीं देते हैं, है ना। कभी कभी लोग कृत्रिम रूप से धोखा देने के लिए ऐसी बातें करते हैं, मुझे कृष्ण दिखाई दे गए, मैंने कृष्ण को नृत्य करते हुए देखा। कोई स्तर नहीं है भक्ति का, लेकिन ऐसी बातें करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो ऐसी ही एक बात फैल गई। सब कहने लगे कि रात्रि के समय कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं और दूर से दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग देखने जाने लगे कि देखो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, रात्रि के समय एक लाइट दिखाई देती है, कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे हैं, वो लाइट घूमती है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को यह पता चला, जो स्वयं कृष्ण है, तो उन्होंने सोचा अरे मैं तो यहां बैठा हूं, वहां कौन खेल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, उनका जो सेवक था वो भी देखने जाना चाहता था। देखिए देखिए जीव की मूर्खता। वो व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु के साथ है, कृष्ण के साथ है, उनको छोड़कर किसी झूठे कृष्ण को देखने जाना चाहता। ये हम सब की अवस्था है। शास्त्र है, गुरु है, साधु हैं, भक्त हैं, हम उन्हें छोड़कर कोई ऐसे झूठे चीज में जो हमें कह देते हैं कि बस हमारे पास आओ, इतना रुपया दो, इतना यज्ञ करो, भगवान की प्राप्ति, व्यक्ति भागता है। कितनी मूर्खता है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि पैसा देने से भगवान प्राप्त होते हैं, कौन से शास्त्र में। लेकिन इस जगत में दो ही प्रकार के लोग हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे। एक वो जो धोखा देते हैं और दूसरे वो जो धोखा खाते हैं। और क्योंकि धोखा खाने वाले लोग हैं, इसीलिए धोखा देने वाले लोग भी हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति, देखिए भारत में, इसलिए हम बारंबार कहते हैं कि भारत की भूमि बड़ी उपजाऊ भूमि है। आप समझते हैं उपजाऊ भूमि, जहां पर फसल बहुत जल्दी आती है। एक बंजर भूमि होती है, एक उपजाऊ भूमि। बंजर भूमि में कोई फसल नहीं आती, लेकिन उपजाऊ भूमि में बड़ी जल्दी फसल आती है। तो भारत ये उपजाऊ भूमि है। हर समय कभी न कभी किसी न किसी स्थान में एक भगवान पैदा होते रहते हैं। अचानक वो व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित कर देता है और फिर हजारों लोग उन भगवान के दर्शन करने जाते हैं जब तक वो भगवान हार्ट अटैक से मर नहीं जाते। और फिर दूसरा भगवान, फिर तीसरा भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने डांटा और बाद में लोगों को पता चला कि दरअसल उस समय रात के समय एक व्यक्ति अपनी बोट पर मछली पकड़ने जाया करता था, और क्योंकि उसकी बोट पर एक लालटेन लगी होती थी जो पानी के में जब वो चलता था तो लहरों पर हिलती थी, और वो लाइट हिलते हुए लोग देखते थे कृष्ण दिख रहे हैं। अब बताइए, मच्छी पकड़ने वाले की बोट की लालटेन को कृष्ण माना जा रहा और हजारों लोग खड़े होकर देख रहे हैं, हाँ जय हो कृष्ण के दर्शन जय हो। ये मूर्खता है। इसीलिए नियम पालन आवश्यक है कि व्यक्ति समझे कि कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है। तो षट गोस्वामी, छह गोस्वामी जो रहा करते थे वे बड़े ऊंचे स्तर पर थे। रूप गोस्वामी हमने बतलाया, वो केवल आंखें बंद करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे। एक बार तो उनसे अपराध भी हो गया। रूप गोस्वामी एक बार ऐसे ही कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, उनको देख रहे थे, आंखें बंद थी, राधा और कृष्ण की लीलाओं को देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि राधा और कृष्ण में कोई हंसी मजाक हुआ, कृष्ण ने थोड़ा मजाक किया, तो रूप गोस्वामी हंस पड़े। वो हंसे इसलिए नहीं थे कि बाहर कोई है, वो हंसे थे कृष्ण की लीलाओं को देखकर। लेकिन उसी समय वहां से एक वैष्णव भक्त जा रहे थे जिनका पांव खराब था, जो लंगड़ा लंगड़ा के चलते थे, और वो सामने से गए और उसी समय रूप गोस्वामी हंस दिए। तो उन वैष्णव को लगा, भक्त को, कि ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, क्योंकि वो रूप गोस्वामी के स्तर को समझ नहीं पाए। और फिर उन्होंने उसको एक अपराध मान लिया। खैर, ये बड़ी दूसरी कथा है कि आगे क्या हुआ, लेकिन रूप गोस्वामी का ये स्तर था। और ऐसे छह गोस्वामी, सभी गोस्वामी ऐसे थे वहां के, छहों गोस्वामी वृंदावन के। आप जब ऑल्टर खुलेगा, ये दर्शन खुलेंगे, तब आप देख सकेंगे वहां पर एक चित्र है जिसमें छह गोस्वामी खड़े हैं एक साथ। तो वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध गोस्वामी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। तो उन्होंने भी उस स्तर पर होते हुए भी नियमों का पालन किया। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम का गान किया। जैसे हम लोग जपमाला में जप करते हैं, एक माला में 108 मणि होते हैं, ऐसे हम लोग 16 माला करते हैं। आप जानते हैं 16 माला ही क्यों किया जाता है? बहुत विशेष ये नंबर है। हम लोग हर रोज माला पर 16 बार ही माला फेरते हैं। ऐसा बताया गया है कलि संतरण उपनिषद में कि व्यक्ति अगर, ये जो महामंत्र है कलि संतरण उपनिषद में, ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद है। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कलयुग है, ना तो कोई तपस्या करेगा, ना तो कोई बहुत कुछ ज्यादा भक्ति करेगा, इनका उद्धार कैसे होगा? और हम सब देख रहे हैं इसको। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि किसी स्थान में लाखों लोग रहते हैं और अगर वहां पर मंदिर खोला जाए तो 2-4 लोग मंदिर जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। पहले ऐसा नहीं था, पहले नियम था। व्यक्ति अपने घर से निकलता था, अपने कार्य पर जाने से पहले, पाठशाला में जाने से पहले, महिलाएं घर का कार्य शुरू करने से पहले मंदिर के दर्शन किया करती थी, भगवान के दर्शन करते थे। ये नियम था। आज भी कई गांवों में ये नियम है। आज हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है ये देखकर। हम ऐसे एक गांव में गए थे तो वहां पर हमने देखा, तो जिस वहां मंदिर था, जगन्नाथ जी ही थे वहां पर, जगन्नाथ जी का मंदिर था और जगदीश मंदिर उसको वो लोग कहते हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर था। तो हमने देखा, तो जब हम गए थे तो उन्होंने मंदिर के सामने ही, उनका बहुत अच्छा बड़ा गेस्ट हाउस है, उन्होंने अतिथियों का रहने के लिए व्यवस्था की है, तो हमें वहां स्थान दिया था। तो हम देख रहे थे सुबह के समय जब हम वहां बैठे थे, तो सब लोग गांव के, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, सब अपने अपने कार्य, बच्चे स्कूल का बैग लगाकर स्कूल जाने के पहले मंदिर आते हैं, तिलक लगाते हैं, अपने स्कूल चले जा रहे हैं। महिलाएं नहा धोकर आए और घर का कार्य प्रारंभ करने से पहले मंदिर का दर्शन करके बस फिर चले गए। पुरुष आए, अपने व्यापार पर जाने वाले हैं, कार्य पर जाने वाले हैं, आए, उन्होंने दर्शन किया, तिलक लगाया, चले गए। बहुत अच्छा लगा ये देखकर। ये हमारी सभ्यता है जिसको हम भूल चुके हैं, इसीलिए आज मंदिर जाना हमारे लिए एक उत्सव बन गया है। बस जन्माष्टमी, रथ यात्रा, हम इंतज़ार करते हैं। कई बार लोग हमें मिलते हैं और कहते हैं, कई कई बार जैसे हमें देखते हैं लोग तो कहते हैं, आप इस कौन से हैं, हाँ हम मंदिर जाते हैं आपके। अच्छा, कब जाते हैं? हर जन्माष्टमी पर जाते हैं। ये स्थिति है आज, वो भी बड़े गर्व से कहते हैं हर जन्माष्टमी पर जाते हैं। तो ये स्थिति है, पहले लोग रोज जाते थे, रोज मंदिर जाते। तो हमारी सभ्यता का धीरे धीरे नाश हो रहा, इसके कई कारण हैं। एक कारण, हम कई वर्ष गुलाम रहे। पहले मुगलों ने राज्य किया हम पर, जिसके कारण सभ्यता का नाश हुआ, बहुत सारे लोगों को अपने धर्म को त्यागना पड़ा, डर कर रहना पड़ा। हिंदुओं को मारा जाता था, उनको बदला जाता था, अगर वो मुसलमान बन जाएं, कलमा पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो मार दिया जाता था। इस भय से हजारों लोग मुसलमान बन गए। तो ऐसे करीब 800 सालों तक मुसलमानों का राज्य चलता रहा, और उसके बाद 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज्य किया। तो आप सोचिए, जिस भूमि पर हजार वर्ष तक दूसरे लोगों ने आकर राज्य किया, गुलाम बनाया, दास बनाया हम लोगों को, हमारी सभ्यता, हमारी जो भूमि की संस्कृति है उसको त्यागने के लिए मजबूर किया, तो स्वाभाविक है कि इतने वर्षों की उस स्थिति के कारण आज हम अपनी सभ्यता को भूल गए। आज हमें मंदिर जाना, भगवान की भक्ति करना, इसके लिए बोलना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। हम लोग कोई उत्सव करते हैं, अभी जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, तो हमें बहुत बड़े बड़े इश्तेहार लगाने पड़ते हैं कि आइए मंदिर आइए। ऐसा नहीं था, क्योंकि सभ्यता का नाश हुआ अंग्रेजों ने, मुगलों ने। आप जानते हैं अंग्रेजों के समय 10 वर्ष तक के लिए कानून बना था एक समय कि कृष्ण की भक्ति बंद की जाए, कृष्ण के मंदिर बंद किए जाएं, और उन 10 वर्षों में अन्य सारे मंदिर चालू थे, शुरू थे, लेकिन कृष्ण के मंदिर तोड़े गए और बंद किए गए। ये कानून कोर्ट ने ऑर्डर दिया था अंग्रेजों के समय, 10 वर्ष तक ये चला, और इसीलिए लोग भूल गए कृष्ण भक्ति को। क्यों कृष्ण के मंदिरों को बंद किया, क्यों अन्य मंदिरों को बंद नहीं किया? क्योंकि उस समय सब कृष्ण की भक्ति करते थे, सब जानते थे कि कृष्ण भगवान है, इसलिए अंग्रेजों ने बंद करा दिया उसको। तो आज हम भूल गए, कई वर्षों से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया कि हाँ ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। आज भी हमारी सभ्यता कहीं ना कहीं बची हुई है, कारवार जैसे छोटे स्थानों में आज भी सभ्यता बनी हुई है, लेकिन वो भी जा रही है आधुनिकता के प्रभाव से। हम अपने आप को आधुनिक बनाते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को खोते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं आधुनिक बनना मतलब प्रगति करना, मतलब भगवान को त्याग देना। ये भगवान वगैरह ये बड़े बूढ़ों का काम है, मंदिर जाना बूढ़ों का काम है, युवा अवस्था में हमें डिस्को में जाना चाहिए, वो हमारा मंदिर है, हमें वो गोवा में जाकर कसिनो में खेलना चाहिए, वो हमारा मंदिर है। देखिए गोवा में बड़े बड़े मंदिर कसिनो बने हुए हैं, मंदिर उनके लोगों के लिए आजकल वो मंदिर ही हैं। तो युवा वर्ग सोचते हैं कि हमें अभी जीवन जीना है, आज जब बूढ़े हो जाएंगे ये सब बूढ़ों का काम है, क्योंकि वैसे भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो बेकार हैं हमारे लिए, बूढ़े हो गए। देखिए कितनी गलत भावनाएं हैं। वो माता पिता जो बड़े प्रेम से एक बालक को बड़ा करते हैं, जब जब एक बालक का जन्म होता है उसके पहले माँ बड़े प्रेम से कई महीनों तक अपने गर्भ में उसको पालती है, फिर बड़ा करते हैं, उत्सव मनाते हैं बच्चे को इतना बड़ा, और वो बच्चा बड़ा होकर सोचता है कि मेरे माता पिता बेकार हैं, वैसे ही काम के नहीं हैं। आप लोग ये कल्पना कीजिए, जिनके छोटे बच्चे हैं, छोटे से लड़के हैं, मान लीजिए बड़े होकर वो आपको ऐसा कहते हैं, कैसा लगेगा आपको? ये सभ्यता हो रही है, इसीलिए अनाथ आश्रम और इसीलिए बूढ़ा घर, वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। क्या आवश्यकता है वृद्धाश्रम की? क्या बच्चे अपने अपने माता पिता की ध्यान नहीं रख सकते बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में? उनको वृद्धाश्रम में फेंक दिया जाता है। आप जाकर देखिए कभी वृद्धाश्रम में क्या अवस्था है। वो सारे जो वृद्ध लोग हैं वो आसक्त हैं अपने बच्चों से, इंतजार करते हैं महीने भर तक, कब मेरा बेटा आएगा मुझे देखने के लिए। क्या ऐसी अवस्था के लिए मां बाप संतान को उत्पन्न करते हैं? ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये भारतीय वैदिक सभ्यता नहीं है, ये केवल पाश्चात्य देशों का प्रभाव है जिसको हम प्रगति मान रहे हैं। हम सोच रहे हमने प्रगति कर ली, नहीं। इसीलिए प्रगति ये नहीं है कि हम अपनी सभ्यता या भगवान से दूर जाएं, असली प्रगति ये है कि जिस स्थान से, जिस सभ्यता से हमें दूर फेंक दिया गया मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, हम फिर से उस सभ्यता पर जाएं, हम फिर से भगवान की ओर जाएं, ये सच्ची प्रगति है। क्योंकि ये जो शरीर है ये अंततः जाने वाला है। कोई आप में से ये मानता है कि ये शरीर नहीं जाएगा? कोई नहीं, हम सब जानते हैं। तो फिर धर्म शरीर के लिए क्यों, आत्मा के लिए क्यों नहीं? पाश्चात्य जगत की तथाकथित सभ्यता हमें शरीर का ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन वैदिक सभ्यता आत्मा के लिए प्रेरित करती है। भगवान की भक्ति आत्मा के लिए है, भगवान की भक्ति शरीर के लिए नहीं है। इसीलिए मृत्यु के बाद भी ये भक्ति बनी रहती है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भक्ति भी मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती। हम सब इस शरीर के लिए सारे कार्य करते हैं, धर्म भी शरीर के लिए करते हैं, ताकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा समाज अच्छा रहे। धर्म भी हम शरीर के लिए करते हैं, उस शरीर के लिए जो जाने वाला है। धर्म होना चाहिए आत्मा के लिए, और आत्मा का धर्म भगवान से जुड़ना। तो इसलिए सच्चा धर्म वो है जो भगवान के पास ले जाए। तो छह गोस्वामियों ने अपने उदाहरण से दिखलाया कि वो बहुत ऊंचे स्तर पर थे, लेकिन नियमों का पालन करते थे। नियम का पालन अति आवश्यक है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा आती है। एक स्थान पर भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों का नियम का पालन नहीं करता वो अपराधी है, और उसको कभी कृपा प्राप्त नहीं होती। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो नियमों का पालन करता है उसके ऊपर कृपा करते हैं भगवान। इसलिए आवश्यक है नियम का पालन, और हर अवस्था में, चाहे बालक हो, युवक हो या वृद्ध हो, नियम का पालन आवश्यक है। महाभारत में बड़ी सुंदर कथा है विदुर की। सारा युद्ध समाप्त हो गया, विदुर को पता चला कि सब लोग मारे गए, सारे कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्र मारे गए, बहुत से लोग मर गए, पांडवों का अब राज्य है। यह सब पता नहीं था विदुर को, क्योंकि युद्ध के समय तो वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तो जैसे ही विदुर को पता चला वो वापस आए, इसलिए नहीं कि अब मैं फिर से मंत्री बनूंगा, मुझे दुर्योधन ने निकाल दिया था और दुर्योधन अब मर गया है, युधिष्ठिर मेरा बहुत प्रिय है, अब मैं फिर से मंत्री बनूंगा, इसलिए नहीं आए। वे आए, युधिष्ठिर ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा आनंद आया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि मानो हमारा जीवन लौट आया हो, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो आए नहीं थे उस लिए, वो एक ही कारण के लिए आए थे, वो आए थे धृतराष्ट्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुना कि सारे 100 पुत्र मारे गए लेकिन धृतराष्ट्र अभी भी महल में बने हुए हैं। और विदुर आए और विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि ये कैसी अवस्था में आप हो, कहां रह रहे हो? आप उन लोगों के घर में रह रहे हो जिनके साथ आपने अन्याय किया, और कैसा अन्याय, जिनकी बहू को, जिनकी पत्नी को आपके सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, आपने कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों के घर में आप भयभीत होकर रह रहे हो, डर कर रह रहे हो, आपको डर है अपनी मृत्यु का, अपने शरीर का। और विदुर कहने लगे ये शरीर ये काल के अनुसार समाप्त होगा ही, क्यों भय? हम सब मृत्यु से डरते हैं, क्यों? क्या हम जानते नहीं कि हमें मरना ही है? जो चीज होनी ही है उससे भय क्यों, उससे बचने का प्रयास क्यों? विदुर समझाने लगे कि आप भीम के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो। आप सोचिए, एक राजा धृतराष्ट्र, सारी पृथ्वी के राजा हैं युधिष्ठिर, और उनके महल में रहने वाले उनके पिता के समान धृतराष्ट्र, और उनको विदुर कह रहे हैं कि तुम भीम के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो। इतने कठोर शब्द, भागवत में ये श्लोक है, बहुत कठोर शब्द। और क्यों कहा? ताकि ये जो आसक्ति है धृतराष्ट्र के हृदय में अभी भी घर में बने रहने की, उसकी आसक्ति के कारण ये युद्ध हुआ, उसकी आसक्ति के कारण 100 पुत्र मारे गए, उसकी आसक्ति के कारण करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन अभी भी आसक्ति नहीं गई। और इसीलिए उन्होंने समझाया विदुर ने, छोड़ो। और फिर धृतराष्ट्र, गांधारी, ये सब उसी समय उन्होंने उस स्थान को त्यागा, हिमालय गए, और फिर वहां पर उन्होंने अपने देह को त्यागा। तो ये हमारी शरीर से हमारी आसक्ति है, लेकिन शास्त्र कहता है कि हमें इस आसक्ति को त्यागना है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं तीन चीजें व्यक्ति को कभी नहीं त्यागनी चाहिए, ये नियम है। हमें कौन से नियम के पालन करने चाहिए? शास्त्रों में तो हजारों नियम है। कोई कहता है ये करो, शास्त्र दिखाते हैं, कोई कहता है वो करो, शास्त्र दिखाते हैं। अब किसकी बात माने? हरेक की पूजा, हरेक की आराधना शास्त्रों में दी गई है, तो क्या हम सबकी करें? 33 करोड़ देवी देवता हैं, भारत में कमी नहीं है देवी देवताओं की, 33 करोड़ देवी देवता। आप अगर रोज एक की भी पूजा करेंगे तो जीवन भर सबकी पूजा नहीं कर पाएंगे, तो किसकी पूजा करें? इसीलिए शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्त। शास्त्र कहता है कि सारे जितने विधि निषेध है, विधि निषेध मतलब विधि यानी पालन करना, निषेध यानी नहीं करना, ये करना और ये नहीं करना, तो इस श्लोक में कहा गया है सर्वे विधि निषेध, जितने भी निषेध या विधि दिए गए हैं ये सब एक नियम के दास हैं। किंकर मतलब दास, एक नियम के दास हैं। कौन सा नियम है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। पहला नियम सदैव कृष्ण का स्मरण करना, और दूसरा नियम उन्हें कभी नहीं भूलना। बस विधि जो करना और निषेध ना करना। तो हमें वो कार्य करने चाहिए जो हमें भक्ति में लाभ दें। तो तीन चीजें भगवान कहते हैं भगवद गीता में कभी त्यागनी नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में, और वो क्या है? यज्ञ, दान, तपह। इनको कभी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, किसी भी अवस्था में। तो यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। तो इस समय के लिए, भक्तों के लिए, भक्ति के लिए क्या यज्ञ है, क्या दान है और क्या तपस्या है, इसको समझना चाहिए। साधारण भाषा में यज्ञ देखें तो हाँ, वो जो अग्नि यज्ञ किया जाता है, दान, कोई व्यक्ति कुछ दान करता है, तपस्या, थोड़ा बहुत हिमालय में चले जाके तपस्या करना, भक्ति की दृष्टि से ये नहीं है। यज्ञ दान तपह जिसकी बात भगवान करते हैं, भक्ति की दृष्टि से पहला है यज्ञ। यज्ञ अर्थात इस समय के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, उसको भी भगवद गीता में भगवान ने बताया। देखिए भगवद गीता में सब कुछ दिया गया है। भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। तो जब भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप करना है, तो कौन सा यज्ञ करना है, जप यज्ञ, भगवान के नाम का यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सच्चा यज्ञ है इस समय के लिए, कलयुग के लिए। क्योंकि कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में भगवान नाम के रूप में आते हैं। और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे हम लोग जब किसी चीज को बुलाते हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते थे उस समय कोका कोला का। प्रभुपाद कहते थे कि आप एक जगह बैठकर कोका कोला कोका कोला कोका कोला कहो तो कोका कोला आपके पास नहीं आएगा, आएगा क्या? लेकिन आप एक जगह बैठकर कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है। कोका कोला और कोका कोला जो पदार्थ है उसमें अंतर है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है। इसीलिए सच्चा यज्ञ है भगवान के नाम का जप करना। और दान, दूसरा दान, कई तरह के दान होते हैं। भगवद गीता के अध्यायों में भगवान ने दानों का वर्णन किया है, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, अलग अलग दानों का वर्णन किया है। जैसे कभी कभी कोई दान करते हैं तो अपना कर्तव्य मानकर करते हैं, इसको सत्वगुणी माना गया। रजोगुणी दान क्या है कि जब देते हैं तो मन में जरा सा कुछ होता है, अरे इतना ज्यादा क्यों दे दिया, इतना नहीं देना था, है ना? कभी कभी होता है। हम लोग देखते हैं मंदिर में लोग आते हैं अपनी जेब से पैसे निकालते हैं हुंडी में डालने के लिए, और देखते हैं अरे ये 100 रुपए का नोट जा रहा है, इसको जरा पास में रख लो, 5 रुपए का फटा हुआ नोट ठीक है। इस मंदिर में लोग वो देना चाहते हैं जो उनको कहीं पर भी नहीं चलता है, तो ठीक है मंदिर की हुंडी में डाला, दान भी हो गया और वैसे भी वो नोट चलने वाला नहीं था, तो ठीक है। रजोगुणी, ये रजोगुणी है दान। और तमोगुणी दान मतलब कोई ऐसा दान दिया जाए जिसके द्वारा व्यक्ति तमोगुणी कार्य करे। कोई शराबी आकर आपको बोले, आप जानते हैं अमेरिका जैसे शहर में लोग भीख मांगते हैं किस लिए, वो लिखकर रखते हैं $1 फॉर अ बियर बॉटल, वो लिखते हैं कि मुझे बियर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, भीख दीजिए मुझे, तो लोग उनको देते हैं, अरे अरे भिखारी है बेचारा बियर नहीं पी सकता, लो जाओ भीख बियर पी लो। आप लोग कई बार देखते होंगे, हम लोग कभी कभी कोई पवित्र स्थानों में जाते हैं, अचानक एक व्यक्ति कहीं से आ जाता है, हमारे साथ कई बार हुआ। हम लोग एक स्थान पर गए, एक व्यक्ति आ गए, उन्होंने बिल्स दिखाए, मेडिकल बिल्स। मैं मेरे बच्चे की दवाई लेने आया था यहाँ पर, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो बच्चे की दवाई लेने आया और मेरा बटुआ किसी ने मार लिया, अब एक भी रुपया नहीं है, दवाई खरीदने के लिए 500 रुपया और मेरे टिकट का 120 रुपया, बस 620 रुपया दे दीजिए, कुछ आपसे नहीं चाहूँगा, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, आपका नंबर दीजिए, जाते ही मैं आपको वापस भेज दूंगा, कृपया मेरी मदद कीजिए, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। आपको क्या लगेगा हृदय में? आपको लगेगा अरे 620 रुपया मैं दे नहीं सकता, बच्चा मर जाएगा, इसका बेचारे के साथ बड़ा नुकसान हुआ, दवाई लेने आया था बच्चे की, इतनी दूर से गांव से यहाँ शहर, और अगर मैं नहीं मदद करूँगा तो कौन करेगा? कृष्ण तो करने वाले नहीं हैं, है ना? हमारे मन में ऐसा आता है भगवान तो किसी की मदद नहीं करते, हम ही करते हैं। तो हम निकाल कर 620 रुपया दे देते हैं कि 620 नहीं, ये लो 700 रुपया रखो, बच्चे के लिए कुछ फ्रूट्स भी ले जाना। तो व्यक्ति बड़ा खुशी खुशी आपको धन्यवाद देता हुआ आपका पांव छूता हुआ चला जाता है और फिर नीचे जाकर शराब के ठेके में जाता है, आराम से शराब पीता है और मांस खाता है, आपको दुआएं देता है। और वो तो आपको दुआएं देता है लेकिन प्रकृति आपको कर्म देती है, क्योंकि अगर आपने ऐसा दान किया जो उस व्यक्ति ने उसका गलत उपयोग किया तो फिर उसका कर्म आपको लगता है। देखिए दान भी, हमें कोई बहुत उदार हृदय नहीं होना चाहिए, किसी ने आया हमने, कोई भी हमारे पास आए हम मना नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? अरे कोई शराब पीने के लिए मांग रहा है, कोई गलत कार्य करने के लिए मांग रहा है, आप उसको दे रहे हो, आपको कर्म लग रहा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को आपने पैसा दिया, उसने मांस खाया, जाकर उसने शराब पी, शास्त्र कहता है कि जो भी व्यक्ति पाप पूर्ण कार्यों में मदद भी करता है उसको भी पाप लगता है। जैसे मांस के लिए कहा गया है, एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा था, एक माता जी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मांस नहीं खाती लेकिन मुझे घर में बनाना पड़ता है तो मैं बनाती हूं। तो हमने उनको कहा 6 प्रकार के लोगों को पाप लगता है, शास्त्र कहता है। पहला वो जो व्यक्ति उस प्राणी को बड़ा करता है बेचने के लिए, उसको पाप लगता है, वो काटता नहीं है लेकिन उसको पाप लगता है। दूसरा जो उससे खरीदता है, वो भी काटता नहीं है ना खाता है, उसको भी पाप लगता है क्योंकि उसने खरीदा काटने के लिए, देने के लिए। तीसरा जो काटता है उसको भी पाप लगता है, उसको तो लगता ही है, वो तो काट रहा है। चौथा व्यक्ति जो मार्केट से खरीद कर लाता है, राइट, उसको भी पाप लगी। शास्त्र ना बड़े प्रैक्टिकल है, सबको पकड़ लिया शास्त्र ने, किसी को छोड़ा नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मैं खाता नहीं हूं केवल मार्केट से लेकर आता हूं तुम्हें भी लगेगा पाप, नहीं नहीं मैं तो केवल यहां से खरीदता हूं उसको बेचता हूं वो काटेगा तुम्हें भी पाप लगेगा। शास्त्र ने किसी को नहीं छोड़ा। और फिर कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? पहला जो बड़ा करता है, दूसरा जो उससे खरीदता है, तीसरा जो काटता है, जिस काटने वाले को बेच दिया उसने, जो काटता है, चौथा जो उससे खरीद कर लाता है बड़े प्रेम से थैली में भरकर, और पांचवा जो पकाता है, खाता नहीं है पकाता है। शास्त्र ने उसको भी नहीं छोड़ा, तुम्हें भी पाप लगेगा और समान पाप लगेगा। ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा लगेगा उसको ज्यादा लगेगा, उसने खाया मैंने खाया नहीं, समान पाप लगेगा। और छठा कौन है? जो खाता उसको तो लगना ही है ना। तो शास्त्र कहता है 6 प्रकार के लोगों को समान पाप लगता है। तो अब आप सोचिए, आप कहेंगे मैं तो केवल मार्केट से लाकर देता हूं, कुछ नहीं, खुद नहीं खाता पकाता नहीं, लग गया पाप लग गया। या मैंने तो केवल बड़ा किया प्राणी को और क्या करे जगह नहीं थी इसीलिए बेच दिया, पाप लगेगा। तो इसीलिए ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। तो यज्ञ दान ये तमोगुणी कार्य है। तो हम लोग दान की चर्चा कर रहे थे, तो पहला था यज्ञ, कौन सा यज्ञ करना चाहिए हम लोगों को? थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे। हाँ, जप यज्ञ और दान। तो सच्चा दान क्या है? धन देना, कुछ चीजें दे देना। जैसे हमने कई बार बताया ना कि लोग मंदिरों में बहुत सारी चीजें दान कर देते हैं, जो घर में वैसे भी जगह नहीं है, चलो मंदिरों में दान कर दो, बहुत जगह मंदिर में बड़े। तो ये भी दान है, अच्छे दान है, लेकिन इस समय में सबसे बड़ा दान है जब हम विद्या का दान करते हैं। विद्या वो जो कृष्ण के प्रति हो, अर्थात कृष्ण भावनामृत का दान इस समय के लिए सर्वश्रेष्ठ दान है। तो हमें अगर दान करना है तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए जो भी संभव हो वो हमें करना चाहिए। ये सच्चा दान है। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो व्यक्ति मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, और जो उसको मदद करता है वो भी भक्त है। तो हो सकता है भगवद गीता के 12वें अध्याय में लिखा गया है, हो सकता है हम सीधे भगवान में अपना मन नहीं लगा पाए। भगवान ने बहुत लोगों के लिए सब कुछ दिया। भगवान कहते हैं भक्ति क्या है? सर्वश्रेष्ठ, अपना मन पूरी तरह से मुझ में लगाओ। स्वाभाविक है हम लोग बोलेंगे हो ही नहीं सकता, हमारा मन तो भगवान, हमारे घर में, परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, व्यापार में, कहाँ कहाँ नहीं लगा, थोड़ा बहुत बचा है आप में लगा देंगे। तो भगवान कहते ठीक है, अगर मन नहीं लगा पाते कम से कम मेरे लिए कार्य करो। तो ऐसे भगवान कहते कहते ये तो करो ये तो करो, इतना कहते कुछ नहीं कर सकते, तो जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको कम से कम मदद करो। बस प्रभुपाद लिखते हैं ये कि कम से कम उनको मदद करो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए सच्चा दान ये है कि हम कृष्ण भक्ति का दान करें, हम कृष्ण की ओर लोगों को लेकर आए, वो सच्चा दान है। हम कृष्ण के भक्ति का ज्ञान लोगों को दान करें, विद्या का दान लोगों को करें। और तीसरा है तप, तपस्या। तो तपस्या, तो ये तो शब्द सुनकर हम लोगों को बहुत डर लगता है ना, तपस्या ये तो वैरागियों के लिए है, हम लोग घर में रहने वाले हमारे लिए कोई तपस्या नहीं। तो तपस्या क्या है, क्या तपस्या हमें करनी चाहिए? थोड़े बहुत नियमों का पालन भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसीलिए यज्ञ दान तपस्या, जैसे अभी आप लोग पिछले एक घंटे से कितनी तपस्या कर रहे हैं, हमारे जैसे व्यक्ति के मुख से सुनना पड़ रहा है आपको, इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है, वो भी एक घंटे तक, और बैठना ही पड़ता है, जा भी नहीं सकते, क्या करें, अंदर आ गए हैं, है ना। या फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो भक्त मंदिर में रहते हैं, वे लोग सुबह उठते हैं 5 बजे से मंगल आरती करते हैं, भक्त बहुत जल्दी 3:30 बजे से यहाँ उठ जाते हैं, नहा धो के 4 बजे से भगवान के नाम का जप करते हैं, 5 बजे से आरती करते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है। आप सबसे विनती है, वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए कि जीवन में एक बार तो अनुभव कीजिए इसका, वैसे जीवन में नहीं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो सुबह का कार्यक्रम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का कार्यक्रम होता है, शास्त्रों में बताया गया है सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट पहले जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त ये भक्ति में प्रगति के लिए सबसे अच्छा समय है। हमारे दिन का समय बटा हुआ है, सुबह का समय सत्वगुण में है, उसके बाद का समय रजोगुण में है, और बाद में आखिर में शाम का समय तमोगुण। इसीलिए व्यक्ति उसी के कार्य करता है। देखिए बच्चा रोने लग गया, सुबह सुबह नहीं उठाना मुझे, आप उसको मत लेकर आइएगा। तो सुबह का समय सत्वगुण में होता है, इसीलिए व्यक्ति पूजा इत्यादि करते हैं। देखिए मंदिर जाना, पूजा करना है, सुबह करता है व्यक्ति। दोपहर का समय रजोगुणी है, इसीलिए पैसा कमाता है, ये रजोगुण का कार्य है, क्रिएशन रजोगुण का कार्य है, कुछ सृष्टि निर्माण करना, तो पैसा कमाना, कुछ बनाना, ये दोपहर में होता है शाम तक, और रात को सो जाता है, ये तमोगुण का कार्य है, इसीलिए रात को सोते हैं। तो ये तीनों, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है वो दरअसल ऐसा समय है जहां गुणों का प्रभाव बहुत कम होता है, और इसीलिए व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। एक स्थान पर कहा गया है कि सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय शिवजी सारी पृथ्वी पर घूमते हैं। और देखिए शिवजी को पृथ्वी पर घूमने के लिए समय नहीं लगता है। आप ये मत सोचिएगा कि शिवजी तो काशी में घूम रहे होंगे, मैं यहाँ कारोबार में कहाँ शिवजी पहुँचने वाले हैं। शिवजी के लिए कोई, ये हमारी तरह तो नहीं है ना कि उनको यहाँ से वहाँ जाने के लिए 3 दिन लग गए, तो पता चला कि पृथ्वी का उनको एक राउंड लेना है तो 3 साल लग गए, 4 साल फिर आते आते, नहीं, वो इसी समय, एक ही समय वो सारी पृथ्वी पर राउंड लेते हैं। और ऐसा कहा गया है उस स्थान पर कि शिव जी ब्रह्म मुहूर्त के समय सारी पृथ्वी पर घूमते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन सो रहा है, कौन भक्ति नहीं कर रहा भगवान की, ये देखने के लिए वो घूमते हैं। जो भक्ति कर रहा है शिव जी बड़ा आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा है जो भगवान का नाम ले रहा है उस समय, और जो सो रहा है, अब आप लोगों के लिए नहीं बताएंगे कि क्या करते हैं शिव जी, नहीं तो आप लोग डर जाएंगे, डराना नहीं चाहते। तो शिव जी घूमते हैं देखने के लिए कि कौन 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 ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त, तो आपसे प्रार्थना हम करते हैं कि आप एक नियम बनाइए कि हफ्ते में एक बार, बस हम आपको रोज नहीं कहेंगे, हम लोग तो रोज करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार, चाहे वो रविवार हो, किसी भी छुट्टी का दिवस हो, आप सुबह यहाँ मंगल आरती में आइए। 5 बजे आरती होती है भगवान की, उसके बाद हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं, और तुलसी की पूजा के बाद फिर हम लोग बैठकर मंत्र का जाप करते हैं। तो आप थोड़ा समय, एक दिन कम से कम हफ्ते में इसको दीजिए कि यहाँ पर आकर इसका अनुभव कीजिए कि ये कैसा होता है सुबह का समय मंगल आरती। तो ये तपस्या है, तो यज्ञ दान और तपस्या, भगवान कहते इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए और इसीलिए नियमों का पालन आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम चाहते थे कि आपके काफ़ी प्रश्नों को लें, लेकिन अब समय नहीं है, क्योंकि जैसे हम वर्णन कर रहे थे पुरुषोत्तम महीना है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि 3 दिनों से आप लोग रोज़ यहाँ पर आकर भगवान को दीप अर्पण कर रहे हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करेंगे भगवान के। आज भक्तों ने भगवान के स्थान को थोड़ा विशेष सजाया है, तो दीप बहुत सारे दीप लगाए हैं आज, क्योंकि आज हम लोग आखिरी दिवस मना रहे हैं। कल समाप्त हो रहा है पुरुषोत्तम महीना, तो इसीलिए आज हम लोग भगवान को ये दीप अर्पण करेंगे। जैसे हर रोज़ हम लोग भगवद गीता का पाठ 15वें अध्याय का कर रहे हैं पुरुषोत्तम महीने में, और आप में से कई लोग हर रोज़ आए थे, शायद बीच बीच में कभी कभी आए हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि जो हर रोज़ आकर भगवान को दीप अर्पण करके गए। और आप सबको भी जो पिछले 3 दिनों से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया ऐसे ही आते रहिए। इस शनिवार को बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस शनिवार को जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है जगन्नाथ जी की। यहाँ जो जगन्नाथ जी विराजमान हैं, ऐसे ही जगन्नाथपुरी में हैं, और विशाल रथ यात्रा। और इस वर्ष बहुत विशेष है, 19 वर्षों के बाद वहाँ नवकलेवर उत्सव हो रहा है। थोड़ा बहुत इसका वर्णन रविवार को करेंगे कि नवकलेवर क्या होता है। भगवान को नया शरीर दिया जाता है, कैसे दिया जाता है इसका वर्णन हम रविवार को थोड़ा बहुत करेंगे। तो नवकलेवर होने के कारण ये 19 वर्ष के बाद हो रहा है, तो इस वर्ष की जो रथ यात्रा बड़ी विशेष है, और 18 तारीख को होगा ये शनिवार को। तो हमने सोचा कि जगन्नाथपुरी में तो लाखों लोग आते हैं, वे लोग इस समय सोच रहे हैं इस बार रथ यात्रा में करीब 20 लाख लोग आने वाले हैं। आप सोचिए 20 लाख लोग एक ही समय एक ही स्थान पर, क्या उत्सव होगा। जगन्नाथ जी का वर्णन करने जाएं तो शब्द इतने सारे, मुख रुकेगा नहीं, इसलिए अभी बंद कर दिया हमने कि अभी वर्णन नहीं करेंगे, रविवार को करेंगे। तो यहाँ भी शनिवार के दिन हम लोग एक उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में इतना हो रहा है, 20 लाख लोग आ रहे हैं, यहाँ कुछ तो जितने आ सकें यहाँ पर हम लोग उत्सव करेंगे। तो भक्त उस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी सी नाटिका भी आपके लिए वो तैयार कर रहे हैं, एक ड्रामा यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, और प्रवचन होगा भगवान की जगन्नाथ जी की कथा, और साथ साथ प्रसादम सबके लिए होगा, कीर्तन भजन प्रसाद। तो आप लोग, ये विशेष दिन है जगन्नाथ जी का, ये तिथि है, इसी तिथि पर हर वर्ष ये होता है, तो आप सब कृपया आइए तो जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जल्दी कर लो, तैयार हैं हम, तो सब तैयारी करो, पेपर बांधो।
हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भगवान संघ के इस कारोबार केंद्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार 4 दिन आप यहाँ पर आए और आपने भगवान की कथा सुनी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक बार उस स्वर में हरि बोल दो। जैसा कि प्रभु जी ने बताया, 18 तारीख इसी महीने की 18 तारीख यानी कि शनिवार को शाम को 5:30 बजे से एक कार्यक्रम है, उसी दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है, उसी के अवसर पर यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम होगा। 5:30 बजे से कीर्तन शुद्ध प्रारंभ हो जाएगा, 6 बजे प्रवचन है, उसके बाद 7 बजे से आरती होगी और 7:30 बजे से ड्रामा शुरू होगा, तो 8 बजे प्रशासन की व्यवस्था होगी। तो आप सभी भक्त कृपा करके उस कार्यक्रम में आइएगा। साथ ही में संडे का प्रोग्राम भी रहेगा, उस दिन जगन्नाथ कथा होगी, मंडे को भी महाभारत का कार्यक्रम जारी रहेगा। और आज के जो स्पॉन्सर हैं उनके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आज का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उसको स्पॉन्सर दिया है एक भक्त ने दिया है, उन्होंने स्थान को गुप्त रखने की प्रार्थना की है, तो उनका नाम नहीं बता पाएंगे, फिर भी आप सभी से प्रार्थना करेंगे उस भक्त के लिए आप लोग उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ भी हैं भक्ति में लगे रहें और भगवान की सेवा इस प्रकार से करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी भगवान के दर्शन होंगे और पुरुषोत्तम योग भगवद गीता से पाठ होगा, उसके बाद जगन्नाथ अष्टम प्रार्थना का गायन होगा और उसके बाद आपसे तो देखिए प्रसाद की रस है। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये 15वां अध्याय अब हम लोग पुरुषोत्तम महीने के अंतिम दिवस पर पढ़ रहे हैं। कृपया सब लोग जोर से और साथ में पढ़ें और आप सबसे विनती है कि कोई बात नहीं करें, केवल श्लोकों को पढ़ें और बाद में जगन्नाथ अष्टकम। प्रसाद लेते समय आप बात कर सकते हैं, तब तक बात मत कीजिए, अनुमति नहीं है, बैन। अथ पंचदशोऽध्यायः श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलं मदशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। जोर से गाइए। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं त न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्रामतीश्वरः ग्रहिद्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते खिलम यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्यच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थितः प्राणापानसमायुक्ताः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वामिमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्यव्यय ईश्वरः यस्माच्छरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करेंगे।
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरन्निताय जय गौरन्निता जय प्रभु प्रदा प्रभु प्रदा प्रभु प्रदा शील प्रभु प्रदा कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत तरला नारी बदन कमला स्वाद मधुका Thank you. ब्रह्मा शंभु ब्रह्मारत प्रति गणेशाचि प्रभो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी तुझे जगन्नाथ सबे वेगं शिरसि शिखिवृक्षं पतितहे गोकुलमेतान्ते सहचरकटाक्षं च श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी तुझे जगन्नाथ स्थिरे कन्दरुचिरे नील हरे सन्प्रसादन्त सहजबलभद्रेण सकल सुर सेवा वक्र दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी तुझे जगन्नाथ परागार सजल जल बच्चे निर्चिते रमावानी राम सुरद मल पंखे शिवमुख सुरेन्द्रराराध्य श्रुति गणशिखावित चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी तुझे जगन्नाथ रुड़ो रक्षण प्रतिनिधित भूदेव पटल सुतिर प्रादुर्भावं प्रतिपदम उपाकर्ण्य सजया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगता सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी तुझे जगन्नाथ ब्रह्म पीड को दया दलो फुल नयनो निवासिनी लाद्रौमी सचरणानन्दप्रेरसिनी रसानन्दे राधा सरस्वतीरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ अयचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम् चिरङ्गम्यां सकलजनकाम्यां वरवधू सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ हरत्वं संसारं धृतपरमसारं सुरपदे त्वं पापानां विपतिम परां राघव पदे अहो दीननाथ नीत चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे
जगन्नाथ अष्टकं पुण्यम् यः पठे प्रयतशुचि सर्वकात् विशुकात्मा विश्वलोकम् सदस्यलोकं सदस्यति जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हर 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 जगन्नाथ जगन्नाथ
Yeah.
निधाय गौर निधाय गौर निधाय जय गौर निधाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Come on. हरि नाम संकीर्तन की जय। पंचाकल्पतरुवेस्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की श्रील प्रभुपाद की जय।